जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विश्वपाद परम हंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमति श्रीमान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ओ ग्लोरियस असेंबल्ड डिवोटीज ओ ग्लोरियस असेंबल्ड डिवोटीज ओ ग्लोरियस असेंबल्ड डिवोटीज ग्लोरियस श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय 24वां और श्लोक संख्या है 14वां। पित्रा आदिष्टः प्रजा सर्गे तपसे अर्णवम् आविशन् दश वर्ष सहस्राणि तपसा आर्चन् तपः पतिं। पित्रा दृष्टा प्रजा सर्गे तपसे अर्णवमाशितं दश वर्ष सहस्राणि तपसार्च तपस्पतिं। पित्रा दृष्टा प्रजा सर्गे तपसे अर्णवमाविशन् दश वर्ष सहस्राणि तपसार्चस्तपस्पतिम्। पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसे अर्णवमाविशन् दश वर्ष सहस्राणि तपसार्चस्तपत्पतिं। पित्रा पिता द्वारा आदिष्टः आदेश पाकर प्रजा सर्गे संतान उत्पन्न करने के विषय में तपसे तपस्या करने में अर्णवम समुद्र में आविशन प्रविष्ट होकर दस वर्ष दस साल सहस्राणी हजारों तपसा अपनी तपस्या से आर्चन पूजा की तपह तपस्या के पतिम स्वामी की। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब इन सभी प्रचिताओं को उनके पिता ने विवाह के करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो सबों ने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक की तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। कभी कभी ऋषि तथा साधु संसार के शोरगुल से दूर एकांतवास करने के लिए हिमालय पर्वत में जाते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि एकांतवास में तपस्या करने के लिए प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने समुद्र के भीतर प्रवेश किया। क्योंकि वे 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, अतः यह घटना सत्ययुग की है, क्योंकि तब लोग 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि तपस्या करते हुए उन्होंने तपेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। यदि चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई तपस्या करना चाहते हैं तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यदि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई तो समझिए कि उसने सारी तपस्या समाप्त करके उनमें दक्षता प्राप्त कर ली है। दूसरी ओर यदि उसे भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ हैं, क्योंकि तपस्या करने से प्राप्त होने वाले सर्वोच्च फल को परमेश्वर के बगैर कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जैसा कि भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त तपस्याओं तथा यज्ञों के स्वामी हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार तपस्या का वांछित फल भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत के 33वें स्कंद और 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है कि अहो बत स्वपचतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु शष्णुर आर्या ब्रह्मानुर चूर्णम नाम गृणंती एते। भले ही कोई चांडाल कुल में अर्थात मानव समाज के सबसे निचले वर्ग में क्यों न जन्मा हो, यदि वह भगवान के नाम का जप करता है तो वह धन्य है, क्योंकि यह समझा जाता है कि वह ऐसे जप से भक्त यही सिद्ध कर देता है कि पिछले जन्म में उसने सभी प्रकार की तपस्या की थी। भगवान चैतन्य की कृपा से जो कोई महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जाप करता है वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसे पहले के लोग समुद्र में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त करते थे। यदि इस कलयुग में कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाला करने का लाभ नहीं उठाता, जो इस युग की पतित आत्माओं के लिए सबसे बड़ी छूट है, तो यह समझना चाहिए कि वह भगवान की माया से मोहग्रस्त है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन श्लाघया चक्षुर्मीलितंजेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಪಿತ್ರಾಧಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜಾಸರ್ಗೆ ತಪಸೆ ಅರ್ಣವಂ ಆಶ್ಪುಷನ್ ದಶವಸ್ತ್ರ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ತಪಶ್ಚಾರ್ಚ ತಪಸ್ಪತಿ. ಜಬ್ ಇನ್ ಸಭಿ ಪ್ರಚಿತಾ ಕೆ ಪಿತಾನೆ ವಿವಾಹ ಕರ್ನೆ ಕರ್ಕೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪನ್ನ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಆದೇಶ ದಿಯಾ ತೋ ಸಬೋನೆ ಸಮುದ್ರ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕಿಯಾ ಔರ್ ದಸ ಹಜಾರ್ ವರ್ಷ ತಕ್ ಏಕ ತಪಸ್ಯಾ ಕಿ ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ಹೋನೆ ಸಮಸ್ತ ತಪಸ್ಯಾ ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಿ. ಆಜ ಯದಿ ಕೋಯ್ ಪಿತಾ ಅಪ್ನೆ ಪುತ್ರೋ ಕಹತಾ ಕಿ ಜಾವ್ ಆ ಪ್ರಜಾ ಪೇದಾ ಕರೋ ತೋ ಕೋಯ್ ಜಾಯೇಗಾ ಸಮುದ್ರ ಮೇ. ಯಹಾ ದೋ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ನಹೀ ಹೈ. ಏಕ ತೋ ಆದೇಶ ದೇನಾ, ಆಜಕಲ್ ಕೋ ತೋ ಆದೇಶ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೀ ನಹೀ ಸಮಜ್ತೆ, ಸಬ್ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ ಢೂಂಡ್ ಲೇತೆ. ಔರ್ ತಪಸೆ ಅರ್ಣವಂ ಆಶಿನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೀ ಕಹಾ ಪ್ರಭುಪಾಜಿ. ಯಹಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಜಬ್ ಕೋಯ್ ಋಷಿ ಮುನಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ತೋ ವೋ ಲೋಗ್ ಹಿಮಾಲಯ ಚಲೆ ಜಾತೆ ಹೈ. ಪಹಲೆ ಜಮಾನೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಮೇ ಘರ್ ಕೆ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಹೀ ಜಂಗಲ್ ವೀರಾನ್ ಹೋತಾ ಥಾ, ಯಾನಿ ಕಿ ಘರ್ ಔರ್ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಕೋಯ್ ಅಂತರ್ ನಹೀ ಹೈ. ಆಜ ಯದಿ ಘರ್ ಶಹರೋ ಮೇ ಹೈ ಫಿರ್ ಭೀ ಜಂಗಲ್ ಜೈಸಾ ಕೈಸಾ ಲಗೇಗಾ ಪತಾ ಹೈ. ಯಸ್ಯ ಗೃಹೆ ಮಾತಾ ನ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ಭಾರ್ಯಾ ಚ ಅಪ್ರಿಯ ವಾದಿನಿ ಅರಣ್ಯತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಯಥಾರಣಂ ತಥಾ ಗೃಹಂ. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಕಹತೆ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ, ಜಿಸ್ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಮಾ ನಹೀ ಹೈ ಔರ್ ಪತ್ನಿ ಭೀ ಕರ್ಕಶಾ ಹೈ, ಮಾರೋ ಗೋಲಿ ಘರ್ ಕೋ ಛೋಡೋ, ವನ್ ಔರ್ ಘರ್ ಮೇ ಕೋಯ್ ಅಂತರ್ ನಹೀ ಹೈ, ವನ್ ಮೇ ಜಾನಾ ಠೀಕ್ ಹೈ. ತೋ ಕಲಿಯುಗ ನೆ ಸಾರಿ ಬಾಜಿ ಪಲ್ಟಾ ದಿ ಹೈ. ಯದಿ ಕೋಯ್ ಅಚ್ಛೆ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಪೈದಾ ಹುಯೆ ಔರ್ ಅಚ್ಛಿ ತರಹ ಸೆ ಪರಿವಾರ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಕೆ ಭೀ ಹಮ್ ಕುಛ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಹಮೇ ಸಫಲ ಹೋನೆ ನಹೀ ದೇಗಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯಾ ಹೀ ನಹೀ. ತಪಶ್ಚರ್ಯಾ ಕಹಾ ಹೈ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ, ತಪಶ್ಚರ್ಯಾ ಕಾ ನಿಯಮ ಭೀ ನಹೀ ಹೈ. ಯೇ ಸಬ್ ಪಹಲೆ ಸೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ. ಋಷಿ ಮುನಿಯೋ ನೆ ಇಸಲಿಯೆ ತೋ ಜೋ ಯೋಗ್ಯ ಉಪಾಯ ಹೈ ವೋ ಕರ್ನೆ ಕೋ ಕಹಾ ಹೈ. ಪ್ರಜಾಪತ್ ಪೈದಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ದಸ್ ಪುತ್ರ ಕೋ ಆದೇಶ ದಿಯಾ ಔರ್ ವೋ ಚಲೆ ಗಯೆ ಸಮುದ್ರ ಮೇ. ಆಜಕಲ್ ತೋ ಸಮುದ್ರ ಮೇ ತೇರನೆ ಜಾತೆ ಹೈ, ತಪಶ್ಚರ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ನಹೀ ಜಾತಾ, ಕ್ಯೂ ಜಾಯೇಗಾ ಔರ್ ವೋ ಭೀ ಅಂದರ್ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಮೇ ಭೀ ನಹೀ ಜಾ ಸಕ್ತಾ, ಜ್ಯಾದಾ ರಹ ನಹೀ ಸಕ್ತಿ ವೋ ಭೀ, ಉಸ್ಕೋ ಭೀ ಹವಾ ಲೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉಪರ್ ಆನಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಜೈಸೆ ವೇಲ್ ಜೈಸಿ ಆತಿ ಹೈ ನಾ ವೈಸೆ ಫಿರ್ ಸೆ ಹವಾ ಭರ್ ಕೆ ಡುಬಕ್ ಕಿಸ್ತಿ ಚಲಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ಯೇ ತಪಸ್ವಿ ಹೋನಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೆ ಬನ್ನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಆವಶ್ಯಕ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಪ್ ಕರ್ನಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮೇ ಗೃಹಸ್ಥೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೊ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಜೊ ಸುಚಿತ ಕರ್ಮ ಹೈ ತೋ ಕೋಯ್ ಭೀ ಕಾಲ ಮೇ ಜೊ ಜೊ ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಕಾಲ ಔರ್ ಪಾತ್ರ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಸುಚಿತ ಹೋತಾ ಥಾ ತೋ ವೋ ಸೂಚನಾ ತಪಶ್ಚರ್ಯಾ ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇ ಹೋಗಿ. ಐಸೆ ನಹೀ ಕಿ ಚಲೋ ದಸ್ ಕರೋಡ್ ರುಪಯಾ ಖರ್ಚ ಕರ್ಕೆ ಶಾದಿ ಕರ್ವಾ ಲೋ, ಅಪ್ನಿ ವಾಹ ವಾಹ ಕರಾವ ಔರ್ ತಪಶ್ಚರ್ಯಾ ಕಾ ಕೋಯ್ ನಾಮ ನಿಶಾನ್ ನಹೀ. ತೋ ಐಸಾ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸಫಲ ನಹೀ ಹೋತಾ. ಹಮ್ ಹಮಾರೆ ರೀತ ರಿವಾಜೋ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಭೀ ಅಪ್ನಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಮೇ ರಹ ಕರ್ ಯದಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಶುರು ಕರ್ತೆ ತೋ ಫೇರ್ ಭೀ कलयुग में जो दूषित वातावरण है तो गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश पाएगा। तो जो जीवन का लक्ष्य है भगवान का संतोष, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश धर्मस्य स्वनुतिष्ठस्य संसिद्धिम हरितोषणम्। अपने अपने सुचित कर्मों वर्ण और आश्रम के अनुसार सुचित कर्म है, तो सुचित कर्म करने से भगवान की प्रीति प्राप्त करनी है, ये लक्ष्य होता है। तो 5000 साल पहले भी जब कलयुग शुरू हुआ तब ये आदेश तो था ही। उस दरमियान में अपनी वैदिक संस्कृति में जो जो महानुभाव हुए हैं उन्होंने विशुद्ध भक्त बनने की कोशिश की थी। यदि 5000 साल पहले भी कुंती ये कह सकती हैं, अहो बत स्वपचतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, भगवान श्री कृष्ण सामने है और बोलती है कि एक चांडाल भी सबसे अच्छा है। किन से? ये जो तपस्वी या ब्राह्मण कक्षा के लोग हैं उनसे ये चांडाल भी अच्छा है, यदि भगवान का नाम उसकी जीवा पर रम रहा हो। क्योंकि भगवान का नाम कब ले सकते हैं? कहते हैं वो सारी तपश्चर्याओं के अंत में ले सकते हैं। इसलिए सत्ययुग में जो तपश्चर्या का जो धर्म था तो सिर्फ शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि के लिए ही तो था। जब वो शुद्धि होती तब भगवान का नाम ले सकते थे। यहां तो इन प्रचेताओं को आगे देखो कि शिवजी की कृपा से शिवजी इनको भगवान के बारे में जो उन्होंने स्तुति की है वो कहने करने को कह रहे हैं कि ये स्तुति ने वो स्तुति देकर मैं अभी ही भगवान को प्रसन्न करके आया हूं, आप भी करो, क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन हो और आप किसे लिए आए हैं। कोई भी बेटा ऐसा नहीं करता, ये तो प्रजापति के बेटे हैं और उस समय जो प्रजापति की जो लायकात थी तो ऐसा 10,000 साल तक का जो तप है यानी कि 1,00,000 साल की आयुष्य होती तो 10वां भाग उसका तपश्चर्या में डालना इन लोगों के लिए कुछ नहीं था। 10वां भाग हमारा यदि 100 साल का जीवन है तो 10 साल यदि तपश्चर्या की तो ठीक है, लेकिन कलयुग ऐसा है कि तपश्चर्या की कोई कीमत नहीं आकी जाती है, भी मूर्खता कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि ये कलयुग में जो सुचित महामंत्र दिया गया है वो करने से वो चाहे चांडाल कुल में भी क्यों ना हो, स्वपचतो गरियान सर्वश्रेष्ठ है, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, क्योंकि ते पुहु तपस्तपते जुहुरु सुष्णुर आर्या ब्रह्मानुर्चरणम नाम गृणंती एते। उसने पहले से ही तपो की सारी सिद्धि करके वो आर्य तो बन गया है, यानी कि जब तक तपश्चर्या नहीं करते तो सत्ययुग में भगवान का नाम प्राप्त नहीं होता, वो तो कलयुग में सीधा प्राप्त होता है लेकिन सत्ययुग में नहीं होता था। यज्ञ दान तप क्रिया पवित्र कर अपनी मनोवृत्ति को पवित्र करेगी, शारीरिक तपश्चर्या, मानसिक तपस्या, ये सारी तपश्चर्या अनुशासन लाने के लिए है, और बाद में भगवान का नाम जपो। पहले भगवान का नाम प्राप्त नहीं था, न तो कोई सुचित था, नहीं तो ये युग के योग्य जीने की आवश्यकता बताते हैं वो नहीं मिलती। जो योग्य में जो युग में ये क्या योग्य है वो पहले से सूचित किया गया है। कृते धायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखये द्वापरे परिचर्यायाम। तो यानी कि ये तीन युग में यज्ञ दान तप क्रिया मौजूद थी, कलयुग में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कलयुग चाहे कितना भी नपावट हो फिर भी उसमें भवसार पार करने का जो उदाहरण दिया है वो सिर्फ भगवान के नाम का। तो जो भगवान का नाम लेने की बुद्धि रखता है इस मनुष्य इस कलयुग में तो अवश्य उसको और कोई तपश्चर्या करने की आवश्यकता नहीं, और कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, और कोई दान देने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो अन्यथा यज्ञ दान तप क्रिया न त्याज्यम इति, यज्ञ दान तप क्रिया पावनानि मनीषिणाम, ऐसे दो बार भगवान कहते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि युग के अनुकूल हम ये भगवान का नाम जपने की प्रक्रिया ले रहे हैं तो अवश्य ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति येने ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम जप कर रहा है तो वो तपस्वी से भी अधिक दानी से भी अधिक और याज्ञिक से भी अधिक और आर्यों से सुष्णुर आर्य सुसंस्कृत आर्य है। आर्य तो अपनी कोई यथा शक्ति भौतिक अवस्था में प्रगति कर सकता है, अपने समाज के रीत रिवाजों को पालन करके वो वैदिक संस्कृति को टिका रहा है इतना ही, लेकिन जो लक्ष्य होता है वैदिक संस्कृति के अंत में कि भगवान की प्रीति प्राप्त करें। शिव जी ऐसे कार्य को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, वो बहुत आनंद में आ जाते हैं। इन लोगों को देखकर ही आप देखोगे श्लोकों में आएगा कि प्रचेता जा रहे हैं पिता की आज्ञा उठाने के लिए, सीधे संसार में नहीं पड़ते। संसार में आने वाली जो ऐसी शोरगुल झंझावात जिसे कहते हैं उसको पहले से ही कंट्रोल कर देते हैं। यहां तो जैसा आएगा देखा जाएगा करके हम संसार के बोझ को आगे आगे बढ़ा रहे हैं और ज्यादातर देखा जाता ही नहीं है। कहाँ देखे जाएंगे तो क्योंकि कोर्ट में, अन्यथा नहीं, कोर्ट में ले जाओ हम वो लोग देख लेंगे कि हम सही है वो सही है क्या कोई, लेकिन वो दृष्टिकोण पहले से ही तपश्चर्या द्वारा देखते थे। तो युगानुसार हमें अवश्य जो पद्धति दी है भवसागर पार करने की वो तो लेनी ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य जन्म भी शुरू नहीं होता। ये लोग इतने पहुंचे लंबी आयुष्य वाले और कड़ी कड़ी तपश्चर्या यज्ञ विधि इत्यादि और पूरे पूरे जानकार यानी कि बुद्धिमान होने के बावजूद सिर्फ पवित्र हो सकते थे लेकिन भगवान नाम नहीं प्राप्त कर सकते। कितना आसान है फिर भी दुर्दैवम इदृशम इहा जनी अनुराग, मेरा दुर्भाग्य है कि भगवान आपके नामों के प्रति भी अनुराग नहीं। शक्ति का परिचय करने के तो हम तो बेवकूफ है ही, लेते ही नहीं। शक्ति भगवान के नामों पूरे पूरी तरह से भरी है, उसका अनुभव भी कहां करते हैं। हम चिपके रहते हैं कि कभी कभी ऐसा क्या कहते हैं कि चमत्कार हो जाएगा उसकी ही राह देखते हैं, लेकिन अपनी ओर से अपनी बुद्धि और नाम पर ध्यान नहीं केंद्रित करते। इस यदि इस कलयुग में कोई हरे कृष्ण मंत्र जप करने का लाभ नहीं उठाता, जो इस युग की पतित आत्माओं के लिए सबसे बड़ी छूट है, तो यह समझना चाहिए कि वह भगवान की माया से मोहग्रस्त है। वो मानेगा भी नहीं कि हमें भगवान का नाम आवश्यक है। कहते कि हम तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, हमें क्या ये सब, ऊंचे हैं हम सबसे। लेकिन क्या माया से छूटे हैं? ब्राह्मण भी नहीं छूट सकता यदि भगवान का भक्त ना, और भगवान का भक्त जब भगवान का नाम नहीं लेता तो भक्त भी नहीं हो सकता। तो सीधी सीधी स्पष्टता हमें करनी चाहिए कि भगवान का नाम लेने वाले ये सारी तपश्चर्या यज्ञ दान कर्म की जो क्रियाएं जो है, तो ये सब से पसार कर चुका है अगले जन्म में, नहीं तो इस जन्म में भगवान नाम क्यों प्राप्त हुआ? और अगले जन्म उनके तृतीय युग त्रेता युग या द्वापर में भी हो सकता है। तो जिन जिन युगों में ऐसे जीव बारंबार 24 लाख योनि में भटक कर आया है, तो क्या उसने तपश्चर्या सत्ययुग में नहीं की है क्या? पर लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि 84 लाख के जन्म की घटमार चालू रही। 84 लाख योनि में भटकना यानी कि कितने युग पसार हो जाते हैं, सत्ययुग त्रेता द्वापर। हाँ, बाद में यदि हम लोग कलयुग में पैदा होते हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि जिन जिन युगों में जिन जिन प्रक्रियाओं भगवत प्राप्ति का साधन बनाई और उसमें मदद करने के लिए या भगवान का नाम प्राप्त करने के लिए बनाई है, तो इस जन्म में हम सीधे क्यों भगवान का नाम लेते हैं? क्या हमने कोई ऐसी प्रक्रिया यहाँ का यज्ञ किया है, दान किया है, तप किया है क्या कलयुग में? उसकी कोई कीमत नहीं बताइए। वो तो अपने अपने युग में कीमती थे, कलयुग में इनकी कीमत कोई नहीं, वो तो सब दूषित हो चुका है। जब भगवान का सीधा नाम और वो भी चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो मंत्र सूचित है, फिर भी वो तो मुक्ति के लिए दिया गया है, प्रेम के लिए नहीं दिया गया। वो तो चैतन्य महाप्रभु ने उल्टा करके प्रेम प्राप्त करवाया, नहीं तो ऐसा बदलने की क्या आवश्यकता थी? चैतन्य महाप्रभु को उल्टा करने की क्या आवश्यकता थी? क्या वेद पुराण नहीं जानते हैं? जानते हैं सब कुछ, फिर भी शास्त्र के साथ खिलवाड़ करते? नहीं, खिलवाड़ नहीं करते, वो तात्पर्य जानते हैं, यानी कि वो भी 10,000 साल तक इनका परिचय होगा। 10,000 साल के बाद प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एलन गिन्सबर्ग 1967 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में जब प्रभुपाद जी का प्रोग्राम तय हुआ था, तब ये चर्चा हुई है। ये 10,000 साल का सुवर्ण युग जिसमें हम लोग 525 साल तो पास कर चुके हैं, या 524-23 जो भी है, तो उसे 10,000 साल तक ही प्रतिभा रहेगी उसकी, बाद में कुछ नहीं रहेगा। तो एलन गिन्सबर्ग प्रभुपाद से पूछता है, प्रभुपाद 10,000 साल के बाद क्या होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं, तू मुझे खाएगा और मैं तुझे खाऊंगा। इसका मतलब क्या है? हरि नाम नहीं होगा, प्रभुपाद जी की किताबें भी नहीं होगी, हरे कृष्णा इस्कॉन भी नहीं होगा, तब तो कुछ नहीं होगा, कोई साधन नहीं। कलयुग इतना दृष्ट ये परेशान करेगा, तब जाएंगे कहां। भागवत में तो साफ लिखा है कि जो जो सारे लक्षण भागवत में कलयुग के बताए हैं वो तो पहले से ही चालू है। लावण्य केश धारणम और यास्य से गिरी काननम, ये सब लिखा है और दोनों आज भी मौजूद है। तो हम लोग मुंडन करवाते हैं, बाहर कहाँ करवाते हैं, वो तो लंबे बाल रखते हैं, जितने लंबे बाल पुरुष के वैसे वो बहुत ऊंचे किस्म का कहलाता है। तो ये तो 5000 साल में यदि कलयुग इतना उसका वर्चस्व बताता है तो 10000 साल की बात क्या होगा, कुछ नहीं। तो जितना हमें इस भाव में इस जीवन में हमें ये सारा मौका मिल रहा है तो ये मौके की तुलना दूसरे समय में नहीं हो पाएगी। ना तो कहेंगे हाँ हमें 10000 साल, तो 10000 साल में तो हम भक्ति की प्रगति करते की भी गारंटी मिलती है कि 10000 साल में अपना जीवन हम सर नहीं कर सकते, भगवत धाम वापस नहीं जा सकते 10000 साल में भी। हम तो 1 साल में जाने की बात कर रहे हैं कि बहुत हो चुका कलयुग, कितने साल लगाओगे? क्या आप लोग ने तय रखी है? देखो कलयुग तो मैं आह्वान दे रहा है, सिसोटी मार रहा है, हम पर ध्यान रख, मेरे भाव का उद्धार करने पर ध्यान मत रख, मेरे पर ध्यान रख। अरे ऐसे तो बहुत प्रलोभन है, हमारी सारी मनोवृत्ति को खींचते रहता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हरे कृष्णा महामंत्र करके मानवीयता की प्राप्ति होती है। अन्य लोग मानवी तो सिर्फ शरीर से ही कहलाते हैं लेकिन चरित्र से नहीं कहलाते। तो जहां चरित्र की भी इतनी सारी सफाई होती है तो एक जो नाम लेने वाला सारे चरित्रों को सर कर सकता है और सर्वश्रेष्ठ गरियान सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। भगवान का नाम लेने से ही अपनी कीमत रहेगी, न तो नहीं रहेगी। दुनियादारी कोई हमारी कोई कीमत करने वाला नहीं है, चाहे हम कैसे भी नौकरी करें, कैसे भी कमाई करें, परदेश जाकर भी करें, कहीं से भी करें, हमारी कोई जनसंख्या इतनी आबादी जो बढ़त जा रही है कि हमारी तो गणना भी नहीं। लेकिन एक विशिष्टता ही हरि नाम जो इन सबों से उत्तम स्थिति पर भक्तों को ला देती है। तो हमें ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की सारी प्रवृत्तियों पर गौर से ध्यान देना है कि सबको लाभान्वित करने के लिए ये सबसे बड़ी परोपकारी संस्था है और शैक्षिक संस्था है। ऐसे नहीं कि चलो कंबल दे दो, ये दे दो और परोपकार करो, नहीं, परोपकार कैसे करें? ऐसे परोपकार करने वाले तो बहुत हैं लेकिन भगवान का नाम प्रदान करने का जो परोपकार है ऐसे बढ़ता कोई परोपकार नहीं जो दूसरे लोग करते नहीं। तो अवश्य यदि प्रजापति बनना है तो पहले तपश्चर्या धारण करनी चाहिए। यहां तो सीधे ही हनीमून पर चले जाते हैं। कर्दम मुनि और देवहूति ने कोई हनीमून नहीं किया था। पता नहीं कितने साल चले गए, बाद में पता इनको ख्याल आया कि भाई गृहस्थी के अभी हैं, तो पहले तपश्चर्या थी। ऐसी पतिव्रता जिसने कोई फरियाद भी नहीं कही, वो तपश्चर्या उसकी रही है। ऑटोमेटिक जो कर्दम मुनि प्राप्त कर चुके तो वो प्राप्त चुके। कर्दम मुनि तो भगवान को अपने हृदय में बिठाए थे, इनकी तपश्चर्या करने में तो इतने उत्प्रण बन जाते थे, लेकिन जब कपिल देव बेटे के रूप में आए तो देवहूति की भी जीवन की सफलता हो गई। तो कहने के मतलब है कि पतिव्रता यानी कि तपस्वी नहीं है कि नहीं पत्नी, तो कौन तपस्विनी बनना चाहती? यदि तपस्विनी है तो दूसरी नौकरी करेगी ना? तपस्विनी यानी कि सारी जिम्मेदारी उठा लेना और सबकी देखभाल करने में पति की इच्छा को समांतर रहना। तो ये आदर्श गृहस्थाश्रम में ये तपश्चर्या का विषय चर्चा नहीं होती। तपश्चर्या का विषय की चर्चा आदर्श गृहस्थाश्रम में नहीं होती, उठाना ही नहीं चाहता है कोई। वहां तो इक्वालिटी का प्रश्न आ जाता है, स्त्री पुरुष में भेद न मत करो, अर्धांगिनी है तो पूरे पूरा हक दो, ये सब कलयुग की स्त्रियों के लिए ये प्रश्न बना रहता है। शास्त्र में जो मंजूर है वो करने से जितना लाभ है, समझ भी आ सकती है, लेकिन शास्त्र को बिना हरिनाम शास्त्र समझने की ताकत भी नहीं आएगी। भगवान की आंतरिक शक्ति का हमें अनुभव करना है तो ये आंतरिक शक्ति तो भगवान के नाम से आती है, नहीं तो शास्त्र पढ़े हैं सालों से, इसका अभ्यास कौन करता? यदि हम लोग यदि हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करते और सीधे श्रीमद भागवतम इत्यादि करने लगते तो हम भी दूसरे मायावादी जैसे होते, हमारा सारा लक्ष्य कुछ और होता। सोलह माला का जप के पीछे श्री प्रभुपाद जी की ये आदेश को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्य जगह बहुत सारे आसानी से अपनी संस्था में भक्त बना सकेंगे, इसलिए चार माला की आवश्यकता बहुत हो गई। अन्य जगह देते हैं, एक माला करे तो भी दीक्षा दे देते हैं। भगवान के नाम पर विश्वास नहीं तो सोलह माला का जो नियम है वो प्रभुपाद ने दे रखा है तो उसको उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो नाम की शक्ति गुरु आदेश के अनुसार प्राप्त होती है। इतने सारे इस्कॉन मिनिस्टर प्रभुपाद जी के चले जाने के बाद सब अपनी अपनी महत्ता बताने के लिए अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ गए और श्री प्रभुपाद जी की संस्था में भी से उठाने लगे भक्तों को। इन लोगों ने कभी ऐसा दावा करके बताया कि हम आपसे ऊंचे प्रकार के भक्त हैं या इन्होंने कुछ ऐसा फैलावा किया है? कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान के नाम की जो शक्ति है, भगवान की शक्ति भगवान के नाम में भरी है, तो भगवान की शक्ति बिना प्रचार नहीं हो पाएगा। इसको हम क्यों सफल हो रहा है? क्यों सफल हो रहा है? पैसे देकर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं भगवान का नाम देने से, और वो भी अधिकृतता से प्राप्त करना होता है। ऋत्विक वाले इतने सारे पैसे वाले हैं फिर भी इतना प्रचार नहीं करते। कहाँ है भक्तों? और भक्तों कैसी कैटेगरी के हैं, कभी किसी के साथ व्यवहार भी नहीं करते। जब हम लोग डरेंगे नहीं इन लोगों से। ऐसी चर्चा भी कभी कभी उठती है, तो इस्कॉन के भक्त लोग अन्य मनस्क रहते हैं, इंडिफरेंट। भेद अभेद हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन भगवान के पक्ष में रहकर हमें करना है, प्रभुपाद जी के पक्ष में रहकर करना है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा, ये ऑर्डर दिया है कि 70 मतला ऊंचा मकान बनाओ, हमें मंदिर बनाने को कहा, ऐसा कोई आदेश नहीं। क्या इन सारी संस्थाओं जो प्रभुपाद जी के बाद शुरू हुई, उनके संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी हो सकते हैं? फिर भी ईर्ष्यालु लोग सब कुछ अनाप शनाप लिखते हैं, लेकिन हम इन लोगों में कोई उदय नहीं देख सकते, न तो कोई बरोबरी करने वाला भी देख सकते हैं। भागते फिरते हैं सब, इनको बुलाते हैं आओ। तो कहने का मतलब है कि ईर्ष्यालु स्वभाव से भक्ति नहीं हो सकती। इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षशे अशुभात्। जो जो चर्चा होती है वो बिना ईर्षा ग्रहण करते हैं, तब भगवान की शक्ति का परिचय होता है। तो ये प्रचेता अपने पिता की आज्ञा से हटकर काम कर रहे हैं। उसने तो सीधा आदेश दिया कि जाओ प्रजापति बनो, तो ये तपश्चर्या करना क्या पिता की आज्ञा से हटकर करते हैं? नहीं, पिता बड़े कर्मकांडी थे, क्योंकि वो भी प्रजापति थे। प्रजापति को हमेशा कर्मकांडी बनना पड़ता है, और कर्म की जंजाल में वो फंसते हैं। कोई यदि पवित्र आत्मा होती है और कारोबार संभालती है, कोई राजा होता है, कोई सृष्टि का संचालक के रूप में आता है, तो ऐसे प्राचीन बरहिष्यत प्रजापति था। अपने 10 पुत्रों को ये आज्ञा दे रहा है, तो क्या वो रूठ जाता है? क्या, अरे मैंने तो कहा कि आप लोग तपश्चर्या करने चले जाओ, ऐसा कोई संवाद नहीं आएगा। भगवान की प्रीति के लिए प्रजापति बनना है, तो भगवान की प्रीति पहले से ही कैसे प्राप्त कर लें? तपश्चर्या द्वारा, वो नियम था। तो वो लोग बिना पूछे बिना कहे सीधे समुद्र की ओर जा रहे हैं। बिंदु सरोवर जैसा समुद्र कहलाता है, जहां शिव जी का निवास स्थान है वहां जा रहे हैं। इनको तो पता भी नहीं था कि वहां शिव जी रह रहे हैं। जो आदेश है तो आदेश तो शास्त्रानुसार होता है। ओ मेरे पिता ने मुझे नहीं दिया फिर भी मैं आया, देखो मैं पिता से बड़ा हूं, ना ना, ऐसी कोई भावना भी नहीं। कई चीजें ये ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसी सीखी जाती है, जो पिता नहीं सिखाते गुरु तो सिखाते हैं। तो ये कोई विरोधाभास नहीं कि पिता ने कहा जाओ प्रजापति बनो और वो लोग चले गए 10,000 साल तक तपस्या करने के लिए। यही प्रजापति बनने के लिए पहले की प्राथमिक आवश्यकता ये अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते करते भगवान के प्रति को प्राप्त करने वाले। देखो यहां है तपश्चार्च तपस्तपतिम, तप द्वारा अर्चना करनी है, अर्चना यानी पूजा करनी है किसकी, तपस्पतिम, भगवान जो सारे तपों का भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम शांति मिच्छति। ये भगवान स्पष्ट कहते हैं जो जो कार्य होंगे, कार्य की शक्ति कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि के रूप में बताते हैं। ब्रह्म से पैदा हुई है, ब्रह्म परब्रह्म भगवान होते हैं तो भगवान का अंश ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म सचेतन है कि चेतना की शक्ति इसमें संचारित है, इसलिए कार्य शक्ति चेतना की शक्ति कार्य शक्ति में पलटती है। पर लेकिन ये भगवान के विरुद्ध जो कर्म होगा, ब्रह्म के साथ कोई निस्बत नहीं रखता, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए रहेगा तो अवश्य वो बंधन करता पड़ेगा और भगवान की प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसलिए ये अनुष्ठान जो है तो उसके पीछे तप का अनुष्ठान तपो के पति भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। इसलिए यही एकमात्र उद्देश्य, सर्वप्रथम उद्देश्य हरेक प्रजापति मनुष्य को भी ऐसी विराट में प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम गृहस्थों में आदर्श गृहस्थाश्रम में भगवान की प्रीति के लिए जीना होता है। तो उसके लिए उसका मार्गदर्शन गुरु के द्वारा प्राप्त करना होता है और गुरु के आदेश को सीधे ग्रहण करके अपने सारे परिवार जो आश्रित है हम पर उसको बिना आसक्त हुए इनकी सेवा करनी होती है, इनके पूर्ति के लिए हमें करना पड़ता है। तो अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुतिष्ठस्य स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषण। वही अनुतिष्ठन यानी कि वो स्थिति आंतरिक स्थिति में हमें बने रहना होता है, स्थिरता प्राप्त करनी होती है। तो वो हेतु है, भगवान का नाम जपने से ये सारे हेतु सिद्ध हो सकते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी, हरि नाम में भगवान की प्रीति प्राप्त करनी है और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जो सुचित कर्म है वो मेरी प्रीति के लिए करो, फर्क क्या पड़ेगा? घर में काम नहीं करोगे, सिर्फ जप करोगे? ग्रंथ तो थोड़े पढ़ सकते हैं, सारा थोड़ा सारा दिन पढ़ा जाता है। हर एक मनुष्य को निभाव के लिए भी तो खर्चा करना पड़ता है, शक्ति का खर्चा करना पड़ता है, कमाई भी करनी पड़ती है, वो भी खर्चनी पड़ती है, लेकिन ये भगवान के आदेश का पालन करने में करनी होती है, नहीं कि इंद्रिय तृप्ति में फर्क वहां पड़ता है। जय श्री प्रभुपाद की। नहीं समझ में आया। वाह, ना ना, ग्रंथ का अभ्यास करना होता है। हाँ हाँ, लेकिन कितना पढ़े? प्रभुपाद ने इसलिए तो ये ग्रंथ पढ़ाने के लिए आदेश दिया, पर उसके अलावा घर में पढ़ना ये कितना है? No, no, I'm Rishikesh Prabhu passed away, so we have to go to, they were telling about 10 o'clock.
Today?
Yeah, today.
Not today, I'm not ready. When you come back?
About 3 o'clock, maybe after two.
Today?
Yeah. Aur dusre bhi hai, to bolo to sahi yaar, main pooch raha hu. No, to Yamuna, to...
Yamuna, I mean to Delhi.
Yes. Today we have to cremate him.
I have to go to Delhi.
Oh, you want to go to Delhi? Oh. No, I may not be able to go today.
Not today?
No.
I am asking when?
Maybe tomorrow. I have to set up the appointment also.
Maybe day after tomorrow.
Could be.
Can I call you and clear up?